تو سمعین، ریجن کے ممبر قاسم نذیر جو کہ آلٹرنیٹو کے ممبر ہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہے ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ ان کو اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھتے رہتے ہیں، سپورٹس سے بھی ان کو کافی دلچسپی ہے، اور خاص کر بچوں کے حوالے سے جب باہر دوڑ کے پروگرام ہوتے ہیں اور فٹ بال کے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کافی بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، فٹ بال کی طرف دیتے ہیں. بہرحال چونکہ وہ سیاست دان ہیں، میری مراد ہے قاسم نذیر. قاسم، خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کو بھی بہت بہت سلام ہو. کیسے ہیں آپ انکل جی؟
بس ہم ٹھیک ہیں جی. پہلے آپ بتائیں، آپ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ایوری تھنگ از اوکے؟
الحمدللہ جناب، گائیڈ لائنز ملی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، صرف مجھے نہیں ہم سب کو ملی ہوئی ہیں، ان کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے فالو کریں تاکہ انشاءاللہ ہم جلد سے جلد دوسری طرف سکسیسفل طریقے سے آ سکیں جہاں ہمیں یہ بیماری نہ لگے، اور خدا نہ خواستہ اگر لگے تو اس کی ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے ہو تاکہ ہمارا فل فنکشنل کام ہو سکے.
قاسم،
پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتنے امپورٹنٹ ٹاپک کی لیے آپ نے مجھے انویٹیشن دیا ہے کہ اس چیز پہ بات کی جائے، سامعین کو بتایا جائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی زبان میں بھی بتایا جائے.
قاسم، آپ ایک بہت ذمہ دار سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص کر آپ کا اسپتالوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ میٹنگ چلتی رہتی ہیں، آپ قانون بنانے والوں میں جو ہے وہ شامل ہیں، بعض چیزوں کو آپ ہیڈ کرتے ہیں اپنے گروپس کو، تو یہ جو اسپتالوں میں فگرز آ رہی ہیں، آپ اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے، اس وقت ڈنمارک میں کتنے کرونا وائرس کے مریض ہیں؟
ہاں جی انکل جی، آپ نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے. جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ کافی پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں لوگ پتا کرنے کی کہ بیسٹ طریقے سے کیسے اس کو کر سکتے ہیں. ڈنمارک میں جو ہے ہر روز پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، کتنے سارے ہیں جن کو مطلب کہ انسنسیو آؤٹیلنگ میں رکھا گیا ہے، اور مجھے بھی ہر روز اس کی انفارمیشن ملتی ہیں، لیکن کوئی انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں کانفیڈینشل کہ وہ ہر کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب آپ نے پوچھا ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ لگا ہے، تو میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جمعے والے دن ہمیں پتہ چلا تھا کہ پورے ڈنمارک میں تقریباً 430 پیشنٹ جو ہیں ان لاکھ ہیں، ان میں سے تقریباً 109 انسنسیو میں ہیں اور تقریباً نیافیس 89 جو ہے وہ قصب غاچہ میں ہیں. اور ہمارا جو ریجن ہے غیقی ان ہوستہ، اس میں 215 جو ہیں ان لاکھتے ہیں جہاں سے 53 انسنسیو میں ہیں اور 43 قصب غاچہ میں ہیں. ہمارا جو ریجن ہے غیقی ان ہوستہ، یہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ لوگوں کو کرونا وائرس ہوا ہے. تو میں ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے شروع کرنا چاہتا ہوں، جتنی بار بھی ہم بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح بچنا ہے ان چیزوں سے، میں وہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. تو بے شک آپ نے بھی رپیٹ کیا ہو یا کسی اور نے رپیٹ کیا ہو، تو میں بھی ذرا چاہتا ہوں کہ ذرا رپیٹ کر دیں کہ یہ جو بیماری ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے. میں یہ کہوں گا کہ کوئی لوگوں کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور پھر کوئی ایسے بھی ہیں ہمارے سامنے جن کے لیے یہ خطرناک نہیں ہو سکتی، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بچائیں. اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہم صابن سے دھوئیں جتنا روزانہ، بلکہ باہر گئے ہیں آپ دھوئیں، گھر میں بھی کئی بار دھوئیں، الحمدللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کے حساب سے بھی دھوئے جاتے ہیں، سپیٹا کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اگر کھانسی آتی ہے یا چھینک آتی ہے تو بازو میں کریں، ہاتھ میں نہ کریں. ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں یا ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہ آئیں. صفائی کا بھی گھر میں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کھانستا ہے یا چھینک آتی ہے تو دوسروں کو لگتی ہے. اسپیشلی جو ہمارے ایلڈرز جو ہیں، ان کو بھی ہم نے بچ بچا کے رکھنا ہے، ان بچاروں کو اکیلے نہیں ہم نے چھوڑنا، لیکن تھوڑا سا آستن ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر گھر میں ایک فیملی اپنے بزرگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو اتنی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آس پاس میں وہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن اگر وہ باہر جاتے ہیں، کوئی ان کے عزیز انکل یا آنٹی ملتی ہیں، تو تھوڑا سا آستن لے کے بات چیت ہو سکتی ہے. اور اس کے جو سمپٹمس جو ہیں وہ کافی ضروری ہیں سننے کے لیے، کیونکہ ایک جو ہے وہ فیپ آئے کہ بخار محسوس ہوتا ہے، ایک کھانسی جسے ہم کہتے ہیں چھا ہوستے ڈرائی کھانسی، گلے میں درد اگر انسان کے مسل میں درد ہو، اور جو سب سے جو ضروری چیز نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ اگر سانس لینے میں پرابلم ہو اور اگر ڈاکٹر بھیجتا ہے تو وہ فوٹوگرافیا کرتے ہیں تو پھر ان کو پھیپھڑے کی فوٹو سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پرابلمس ہیں. لیکن اسپیشلی جو ویت فائکنگ کی پرابلم جو ہے, سانس لینے کی پرابلم, اس میں مطلب کہ نوٹ کرنا چاہیے کہ ہے کہ نہیں. کیونکہ ایسا بھی ہوگا کہ جب ہمیں نارمل فیور ہوتا ہے تو ہم اس کے ہم بیڈ پہ نہیں لیٹتے, ہم مطلب کہ پھر بھی چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, سودا سودا لے لیتے ہیں, ہمیں اتنا افیکٹ نہیں کرتا. اسی طرح کرونا جو ہوگا یہ بھی اگر کسی کو لگے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں محسوس کریں گے. اب میرے ایک دو دوست ہیں جن کو کرونا لگا تھا, ان سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک جو میرا دوست ہے اس نے کہا تھا اسے تو محسوس ہی نہیں, اسے کہتا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کرونا بھی ہے. کہتا ہے مجھے شروع شروع میں تھا کہ کھانسی آ رہی تھی اور دردیں ہو رہی تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, انہوں نے ٹیسٹ میں کہا تجھے کرونا ہے, لیکن اس کے بعد اسے اتنا محسوس نہیں ہوا. میرا ایک اور دوست ہے اسے کرونا ہوا ہے لیکن اسے کافی ٹربلس ہے, کہتا ہے یار بخار ہے, کھانسی آتی ہے, مسل میں بھی درد ہوتی ہے لیکن سانس لینے میں اسے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک انفلوئنزا کی طرح ہے, اور یہ بالکل غلط ہے, یہ ایک انفلوئنزا کی طرح نہیں ہے. یہ سوچ جو ہے نا اس کو ہمیں دور کرنا ہوگا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انفلوئنزا جو ہے وہ کئی صدیوں سے ہم جانتے آ رہے ہیں کہ انفلوئنزا جو ہوتا ہے ہمیں ہوتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے, ایک دوسرے کو کیسے سمیٹا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری خبر ہے, بہت ساری دوائیاں ہیں. لیکن کرونا جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. اس کے ہمیں یہ نئی بیماری ہے جسے ہم ابھی جاننا شروع کیا ہے, اور نہ ہی اس کی کوئی دوائیاں ابھی آئیں ہیں. میں نے کافی ساری فیس بک میں بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں حکیمیں یا ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ آپ بال سکھانے والی مشین دے کے منہ میں گلے میں پھیریں, بار بار گرم پئیں, کھائیں پئیں. نہیں, اس کی کوئی خاص دوائی ابھی نہیں نکلی. کوپن ہیگن یونیورسٹی میں اس کے اوپر کافی ریسرچ کی جا رہی ہے اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو ایک دوائی ملے, اور ان کو شک ہے کہ وہ اس کے قریب آ رہے ہیں, لیکن ریسرچ کے لیے ان کو اور نئی کیمیکلز کی ضرورت ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. پھر کوئی ایشیا میں ملک ایسے ہیں جہاں انہوں نے ملیریا کی میڈیسن استعمال کی اور ایڈز کی میڈیسن استعمال کی ہے جس سے لوگوں کو بہتری آئی ہے لیکن کرونا ختم نہیں ہوا. تو یہ بھی بہت چیز ضروری ہے نوٹ کرنا کہ ایسی کوئی خاص دوائی ابھی آئی نہیں ہے جس طرح انفلوئنزا کی دوائی ہوتی ہے. تو اس چیز کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ سمیٹا کیسے ہوتی ہے, اور یہ وہ ایسے ہے کہ یہ سمیٹا ہوتی ہے تھوک سے ہوتی ہے, اگر آپ کے منہ کے اندر جاتے ہیں ڈراپس یا آپ کے آنکھوں میں یا ناک میں جاتے ہیں. انسان کو سمیٹا لگنے میں 2 سے 12 دن لگ سکتے ہیں, اور جب ان کو یہ سمچوم آتی ہیں تو اس کے تقریباً 14 دن بعد کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جن کے پھیپھڑوں میں جا کے لگ جاتی ہے, پھر ظاہر ہے پھر ان کو ہاسپٹل سے مدد ملتی ہے. اور پھر بہت سارے سامعین یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے شک ہے کہ شاید مجھے ہو کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر کو فون کرنا ہے, آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا ہے. کیونکہ جتنے بھی پیشنٹ جن کا شک ہے ہمیں کہ ان کو کرونا ہو سکتا ہے, ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے. ان کو ڈائریکٹ ہاسپٹل بھیجا جائے گا جہاں ان سے ٹیسٹ کیے جائیں گے. اب کوئی ایم اے ٹیسٹ انہوں نے شروع کرنے ہیں لیکن ابھی انہوں نے کیے نہیں ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ ایسے نہ ہاسپٹل جا سکتے ہیں نہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں بتائے فون کیے. آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہیلا وال ہاسپٹل میں, جو کہ غقیون ہوسٹل میں ہے, ایک کیس ہوا تھا کہ جہاں ایک پیشنٹ آیا تھا, اس نے کسی اور چیز کے بارے میں لے واک سے بات کرنی تھی لیکن بعد میں جا کے پتا چلا وہ پازیٹیو نکلا کرونا سے. اس کی وجہ سے تقریباً 31 ڈاکٹرز اور نرسوں کو گھر بھیجنا پڑا کیونکہ شک تھا کہ شاید ان کو بھی ہو کرونا. تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑنی ہے ادھر. ڈاکٹر سے فون کریں, ان سے بات چیت کریں, اور اوپر سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک اسپیشل ہاٹ لائن بنائی ہے ادھر غقیون ہوسٹل میں, بلکہ ڈنمارک میں ہم نے ایک ہاٹ لائن بنائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کرونا وائرس نکلا تھا, جب ڈنمارک میں پھیلنا شروع ہوا, بہت ساروں نے لے واک کو فون کیا, ڈاکٹروں کو فون کیا, لمبی لمبی فون کالز کی لائن لگ گئی. تو اس لیے ہم نے یہ بہت مناسب سمجھا کہ ہمیں ایک ہاٹ لائن بنانی پڑنی ہے جدھر ہم فون کر کے بات چیت کر سکیں کہ ہے کہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے خود بھی اس ہاٹ لائن کو فون کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ریجن کا ممبر ہوں, تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو میرے جو سامعین ہیں جب وہ فون کریں گے کہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ ملیں گی, کس طرح کی بات چیت ہوتی ہے. تو میں نے بھی ادھر فون کیا, اپنے بارے میں بات کی, کیونکہ میں بھی اسپین میں گیا تھا اور آیا ہوں, تو ان سے اچھے طریقے سے بات ہوئی. میں نے دیکھا کس طرح وہ سوال کرتے ہیں, کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تاکہ सब लोगों को जो फोन करेंगे उनको भी पता चले, लेकिन जो डॉक्टर आसपास बैठेंगे वो भी बता सकते हैं कि आपने टेस्ट कराना है कि नहीं कराना है। और जो नई चीज जो हमने शुरू की है इधर गई क्यों होस्टल में, वो ये है कि पहले हम हर किसी को टेस्ट नहीं करते थे। अगर कोई फोन कर कहता था मेरे सर में दर्द है, मुझे बुखार है, तो हम कहते कि ठीक है आपने 2 हफ्ते की खांसीन घर में लेनी है। और उसकी वजह यह थी कि शुरू में जब लोग इटली से आ रहे थे तो उनको हम फॉलो करते थे कि आप एयरपोर्ट आए हैं, उधर आप मीट्रो में गए हैं या आप ट्रेनिंग सेंटर गए हैं, किधर किधर गए हैं हमें बताएं, ताकि हम हर जगह फोन करके लोगों को इतला कर सके कि उन्होंने इन चीज से बचना है। लेकिन फिर ये हुआ कि जिस तरह बहुत सारे जहाज लैंड होना शुरू हुए, पूरी दुनिया से आना शुरू हुए, ये बीमारी भी दुनिया में फैली, तो ये चीज वो नहीं कर सकते थे कि इसे फॉलो अप नहीं कर सकते थे कि लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट तरीका यही है रोकने का कि लोगों को फोन, अगर कोई फोन करके कहता है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं, तो उनको को 2 हफ्ते की खांसीन घर में लेनी है। अगर सांस की भी साथ में प्रॉब्लम है फिर हॉस्पिटल आना है, क्योंकि फिर बहुत अर्जेंट मैटर हो जाता है। अब हमने जो शुरू किया है वो ये है कि दिन में 2500 टेस्ट हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कर सकते हैं कि जो कंपनी नोवो नोवर्डिस्क है उन्होंने हमारे साथ एक फ्रीली एक काम शुरू किया है जिनकी जिसकी वजह से हम ये टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब और भी ज़्यादा हम टेस्ट कर सकते हैं। और साथ में हमने गईस हॉस्पिटल में पूरा जो नोवा फ्लॉय जो है वो हमने स्पेशली कोरोना वायरस पेशेंट के लिए खोल दिया है। जितने भी इधर डॉक्टर्स होंगे नर्सेस होंगे उनका पूरा फोकस कोरोना पेशेंट पे जाएगा। तो ये हैं जो चीज़ें हमने इधर शुरू की हैं गैक्यून हॉस्टल में, और अभी भी बहुत सारा काम हो रहा है, हमें बहुत सारी फिक्र भी है और रोज़ाना हमें भी अपडेट्स मिलती हैं। जंगली
जी कासिम, जो खबर है क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी तक जो है 72 जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं?
अंकल जी तकरीबन हर रोज ही क्या कहते हैं डेथ हो रही है अनफॉर्चुनेटली। मेरा जो खुद जो मैं करता हूँ वो ये है कि मेरे पास एक ऐप है जिसके जरिए मैं फॉलो करता हूँ। कल जो मैंने चेक किया था वो यही था कि तकरीबन 65 डेथ जो मैंने देखी थी उसमें थी अब तक जो हुई है।
सर मैं आखिर में आप एक मैं बात जरा कर लूं आपकी पार्टी की, चूंकि ये एक रेलिवेंट सवाल है ये मीडिया पे चल रहा है।
आप नहीं, मैं काबू आया हूं, बेशक बात करें।
आप चूंकि पुराने मेंबरों में शामिल आपका शुमार होता है, जो अगर पाकिस्तानियों को देखा जाए बैकग्राउंड के लोगों को, तो मेरे ख्याल आप पुराने मेंबर हैं जो अल्टरनेटिव पार्टी में है, जिसमें आपने इलेक्शन भी पहले पार्लियामेंट का भी गालबन लड़ा था इलेक्शन, और आप रीजन के मेंबर भी इस पार्टी से बने हैं। तो ये जो पार्टी में अभी कन्फ्लिक्ट हुआ है, 4 मेंबर जो हैं वो लूस गैंगा हुए हैं, और उसके बाद जो है पार्टी फॉर मैन है जो कगेली मेंबर हैं, तो ये थोड़ी सी बात शेयर करेंगे हमारे सामाइन के साथ, असल हकीकत क्या है?
अंकल जी इसमें कोई सीक्रेट तो है नहीं, सिंपल बात यही है कि हमने एक नई चेयरमैन चूज की है जिसके शायद पहले से कॉन्फ्लिक्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन में और पार्लियामेंटेरियंस 3-4 जो दो तीन वो कहूँगा जो बैठे हुए थे उनके साथ, तो वो इस चीज़ से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं कर सकते, इस पार्टी में नहीं रह सकते। बेशक के तकरीबन 1500 बंदों ने इस चेयरमैन को चूज़ किया है, तो उन चारों ने कहा है कि हम लुइस गैंगा होना चाहती हैं, तो वो बस लुइस गैंगा हो गए। तो ये एक सिंपल सी बात है, सीक्रेट तो इसमें कोई नहीं है। तो वो चार अपने अपने तरीके से बातचीत करेंगे, अपनी क्या कहते हैं पॉलिसीज के बारे में शेयर करेंगे, बात करेंगे, फाइट करेंगे, जैसे भी है। और ये जो चारों जो हैं मेरे बहुत ही अच्छे और अजीज दोस्त भी हैं, मैंने ना किसी से शिकवा किया है ना गुस्सा किया है, अभी भी मेरे इनके साथ अच्छे रिलेशन से बातचीत है। लेकिन मैं अपनी पार्टी में हूँ और उम्मीद है कि इधर ही रहूँगा और इधर ही फाइट करूँगा, क्योंकि मेरे लिए फिलहाल ये सही पार्टी है।
आप अभी मौजूदा पार्टी में कसम, ये जो लुइस गैंगा हो जाते हैं इनका रोल क्या होता है, या ये किसी पार्टी से पहले इनका, ये जो लुइस गैंगा होते हैं क्या इनका किसी पार्टी से पहले मुआहदा होता है?
आपकी आवाज बंद थी इसलिए आप दोबारा शुरू करेंगे।
दोबारा सवाल कर दूं कासम, क्या ये जो लुइस गैंगा होते हैं जो अपनी पार्टी को छोड़ के जो जैसे दूसरी सीटों पे बैठ जाते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं होती, क्या ये पहले से किसी पार्टी से बात कर लेते हैं कि वक्त आने पर हम आपकी पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे? वैसे तो सियासी लिहाज से ये कदम उठाना जरा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं जाकर पनाह तो लेनी होती है।
अंकल जी, इस सवाल का जवाब तो ये लुइस कहेंगे ही आपको दे सकते हैं कि अगर उन्होंने किसी पार्टी से पहले बात की हुई है या नहीं की हुई है। मुझे मुझे कोई जान पहचान नहीं कि इन्होंने इस तरह की कोई बात की हो, और ऑनेस्टली ना मुझे कोई खास इंटरेस्ट है इस चीज़ का। लेकिन मुझे जहाँ तक वो फेलपैक इंटरव्यू से पता चला है वो यही है कि इन चारों ने कहा है कि हम एक ऑफिस चाहते हैं जहाँ हम चारों साथ बैठ सकें और एक दूसरे से शेयर कर सकें, तो फिलहाल इन्होंने तो यही करना है जहां तक मुझे खबर है और पब्लिक को जो खबर है।
ऑफिस जो है वो मिल जाएगा कानून या डेफिनेट पार्लियामेंट के मेंबर तो हैं स्टिल वो?
नहीं, ऑफिस तो मिल जाता है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि देखें जो पार्लियामेंटेरियन
कासिम वो कहां गए जब बंदा एक वोटर सपोर्टर जो होता है जो उम्मीदें पार्टी की तरफ से दिलाई जाती हैं, तो क्या ये पूछा गया जब ये लिस्ट गंगा हुए हैं तो जिन वोटर सपोर्टर से पूछकर ये लिस्ट गंगा हुए हैं ये इनका अपना फैसला है?
नहीं, जाहिर है ये तो इनका अपना फैसला है, क्योंकि आपने ये देखना है कि तकरीबन 1,10,000 मेरा ख्याल था तकरीबन जिन्होंने अल्टरनेटिव पार्टी को वोट दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे 4-5 मेंबर बने हैं पार्लियामेंट के। कोई इनमें से ये नहीं चाहता कि हमारी सीट लेके कोई और की जगह चला जाए, ये हर पार्टी में ऐसे कोई ये पसंद नहीं करता। लेकिन ये भी सच है कि जो वोट इन लोगों को मिले हैं वो इनके पर्सनल वोट्स हैं, तो अगर ये किसी अगर एक पार्टी से निकलते हैं और अपना साथ में कुर्सी साथ लेके जाते हैं तो वो इनका हक है, वो हम छीन नहीं सकते। लेकिन जो हक छीना गया है वो तो पब्लिक से छीना गया है, जिन्होंने अल्टरनेटिव को वोट दिया था, जिन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि अल्टरनेटिव की पॉलिसीज बनाई जाएंगी। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ 1,10,000 को आप कभी ये फेयर नहीं कर सकते कि एक उनके आप वोट लेकर लुइस कहेंगा बन जाए। लेकिन कुर्सी इनकी है, इनका हक बनता है, ये जो मर्जी करें, और इन्होंने अपने हक का फायदा उठाया, चलें जैसे भी है। मैंने इनको गुड लक कहा है, हमारे भाई सिकंदर सदीक भी इनमें से एक हैं, उससे भी मेरी बड़ी अच्छी तरीके से बातचीत होती है और उम्मीद भी रखता हूँ कि उसके साथ भी कॉपरेट होगा, आगे भी कॉपरेशन होगा मेरा जिसके साथ भी है, सामा पाइट में रखूंगा। मेरी पॉलिटिक्स में मेरा यह है कि मैं हर किसी के साथ इखलाक रखता हूँ, मैं हर किसी के साथ मिलजुलता हूँ, बातचीत करता हूँ, क्योंकि हमने एक दूसरे को साथ बैठ के हमने सामा पाटा करना है हर तरीके से। जो नॉलेज दूसरों के पास है वो मैं खुद देने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज होती है वो मैं दूसरों को देता हूँ। तो मैं किसी के खिलाफ किसी भी तरीके से बात नहीं कर सकता। मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने फैसला किया हेलो लुक मेरे, आगे हमारी जो सामा पाट होगी उसको हम देखेंगे।
हम डेमोक्रेट मुल्क में रहते हैं, सियासी फैसला करने का हर आदमी को हक है, लेकिन वो जो वोटर सपोर्टर होते हैं उनके जज्बात तो मजरूह होते हैं।
नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो जैसे मैं आप कह रहा हूँ कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि 1,10,000 लोगों ने अल्टरनेटिव को वोट दिया है कि ये पार्लियामेंट में जाएं, अब वो 5 लोगों को भेजा है लेकिन 5 में से सिर्फ एक अब बैठा हुआ है, ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो जाहिर है नाराजगी है, और वो तो हमें सोशल मीडिया से भी काफी नजर आया है कि बहुत सारे लोग बहुत नाराज हुए हैं कि आप कैसे ये लेके जा सकते हैं, आप अपना मैंडेट जो है वापस कर दे ताकि जो सप्लेंट है वो अंदर आ सके, ताकि वो पार्टी की
जब
जो
आपकी बात चल रही थी, मैं चूंकि ये नाइंसाफी होगी ये बात ना करूं इस वक्त मुझे याद होगी है कि जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो हम भी अक्सर आपको डेफिनेट नागवार गुजरती होगी बात सियासी तौर पे, वैसे तो आप हमारे अजीज हैं बात करते रहते थे, उस वक्त हम कहते थे कि दो चीज़ें ना रखें, मैंडेट ना रखें, पब्लिक ने आपको वोट दिए हैं, आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, पब्लिक के वोट ज़ाया होंगे अगर आपकी अल्टरनेटिव ये जो रीजन की सीट चलेगी। तो अब आप वाली बात सही है कि आपके वोटर सपोर्टर ये मांग रहे हैं कि आपने पार्टी का वोट लिया और ज़्यादा वापस करें।
जाहिर है ये तो हर कोई कहेगा, अगर विंस्टा हो, सोशल डेमोक्रेट है, जॉन सी भी है, वो हमेशा यही बात करेंगे वापस करें आप। अब आप देख लें कि पिछले जो पीरियड गया है हमारा फाल्के सिंह का, उधर सोशल डेमोक्रेट से एक फिर नीले स्नोवा हमारे पास आई थी जिसकी वजह से हमारे 10 मंडेट हो गए थे फाल्के सिंह में, लेकिन वो भी अपना मंडेट साथ में लेके आई थी, और बहुत सारे सोशल डेमोक्रेट के जो सपोर्टर्स थे वो भी नाराज थे कि आप अपना वोट लेके आगे कैसे जा सकती हैं, ये आपको वापस करना चाहिए। लेकिन उसने भी कहा था कि मेरा पर्सनल वोट है, लोगों ने मुझे वोट इसलिए मुझे पर्सनल वोट्स भी दिए हैं ताकि मैं उनके हक के लिए लड़ सकूं, अगर मैं वो सोशल डेमोक्रेट में नहीं कर सकती तो मैं अल्टरनेटिव में करूंगी। अब वही बात इधर नजर आ रही है कि इन्होंने कहा है कि हम अपने चेयरमैन से खुश नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ
सवाल किया जाता था जब पर्सनल वोट है तो पर्सनल वोट जो है वो अगर क्या उन पर्सनल वोटों से पूछा गया कि मैं ये काम करना जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ?
ये तो आप उनसे पूछे ना जो लुइस किंग है, मैं किसी और के बिहाफ तो आपको ये
अगर मैं आपका तजिया जाऊँ एज ए मतलब पॉलिटिशियन ही एज ए काम वर्कर जो है कम्युनिटी का एक डेनिश कम्युनिटी का जाऊँ तो इस तरह खबरें आ रही हैं कि ये पार्टी अगली दफा जो है वो फल्के थिंग से आउट हो जाएगी, आप क्या कहेंगे?
जब हमारी पार्टी 2015 में खड़ा होना चाहती थी, जब मैं पार्लियामेंट के लिए खड़ा था, हर इंसान मुझे भी यही कह रहा था कि यार ये पार्टी अंदर नहीं आ सकती, ये पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती, इसके कोई चांस ही नहीं है, बल्कि रिपोर्टर्स भी यही बात कहते थे। उसके बावजूद हम 9 मंडेट लेके आ गए, छठी सबसे बड़ी पार्टी हम फाल्के सिंह में थे। तो अभी बेशक लोग ये बात कह रहे हो, लेकिन अभी भी काफी टाइम है फाल्के सिंह के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि अब हमारा काम आपने आगे देखना है, फिर उसके हिसाब से पता चलेगा कि हम सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो सबसे जरूरी चीज इधर बात है कहने की, वो ये है कि बेशक ये 4 लुइस किंग हुए हैं, अगर 5वां भी लुइस किंग होता फिर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि फिर हमने बाहर जाके दोबारा वेलिया क्लैंग जमा करनी थी जो हमने 2014-15 में किए थे, लेकिन अब हमने वो नहीं करना क्योंकि हमारा अभी भी एक मंडेट बैठा हुआ है फाल्के सिंह में, तो उसकी वजह से हम बच गए हैं, जिसकी वजह से मुझे पक्का यकीन है कि इंशाल्लाह अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें भी हमारे अच्छे चांसेस होंगे।
बिलाल अपना कासिम, अगर आपसे कहें कि ये जो हम सुबह आप भी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों का आपका टाइम है, हम घर से निकले हुए हैं, ये कोरोना वायरस पर अपनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, साला साल से कोशिश करते हैं, कासिम क्या ये हम अपना टाइम, बच्चों का टाइम, कम्युनिटी का टाइम, सियासतदानों का टाइम कहीं ज़ाया तो नहीं कर रहे?
किस चीज़ पे?
क्या ये जो कुछ हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या कि अपना जो है टाइम ज़ाया कर रहे हैं सबको इन्फॉर्मेशन के लिहाज से?
अंकल जी, इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन दें आप, असली इन्फॉर्मेशन दें, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दें, वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे मैंने आपका पहले शुक्रिया अदा किया कि आपने कोरोना वायरस पे ये टॉपिक रखा है, इसके बारे में हमने बात करनी, जिस तरह मैं भी बता रहा हूँ कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह हॉस्पिटल के ऊपर हमने फोकस डाला हुआ है ताकि हम उनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, कैसे हम डॉक्टरों की ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, डॉक्टर भी फ़ोन कर रहे हैं हमें, वो भी हमसे पूछ रहे हैं कि हम इस तरीके से चलाएँ या दूसरे तरीके से अपनी ये फॉक्सिस चलाएँ, फुल टाइम हम लगे हुए इस चीज़ में, और आगे इन्फॉर्मेशन हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, आप मेरे जरिए दे रहे हैं, किसी और के जरिए दे रही हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और हमें करना चाहिए, अपने तरीके से कर रहे हैं, और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग।
आप क्या समझते हैं कि स्कूल खुलेंगे या कि ये गर्मियों की छुट्टियों तक जाएगा काम?
फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि अप्रैल के एंड तक है, मेरा दिल नहीं मानता कि ये क्या कहते हैं अप्रैल के एंड या फोर्स के बाद तक होगा, और उसकी वजह ये है कि अभी हमने देखा ही नहीं कि कितने लोग बीमार हुए हैं, जिस तरह वो स्टैटिस्टिक भी टीवी में जब वो खांसी मिलती से होती है वो दिखाते हैं कि कितने लोग बीमार हैं और कहाँ तक शक है कि लोग कितने भी बीमार हुए हैं। मेरा जो शक है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये अगस्त के, मेरे ख्याल अगस्त के शुरू समर पे के बाद ही मेरे ख्याल मुझे शक है कि खुलेंगे। फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि हमें होम स्कूलिंग करनी पड़नी है, स्काइप में पढ़ाना पड़ना है, उसकी सिंपल वजह यही है कि अभी हमने टॉप नहीं किया इस बीमारी को। इधर अगर आप इटली को देख लें, स्पेन को देख लें, तो उधर बहुत सारे लोगों को ये बीमारी अब टॉप पे गई है, मतलब कि अब लगी है और बहुत सारों को लगती जा रही है। डेनमार्क में अब हमने ये भी देखना है कि कितने लोग सेल्फिश हैं या कितने लोग अपना गवर्नमेंट की बात सुनते हैं। मैंने शुरू से एक बात की है कि कितने लोग बीमार होंगे ये डिपेंड करता है कि लोग कितने सेल्फिश हैं, क्योंकि अगर सेल्फिश जो लोग होंगे वो ये दूसरों का ख्याल नहीं करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं, वो कहेंगे पार्क में चलो, इधर चलो, उधर चलो, बच्चों को लेके घूमेंगे, तो जाहिर है फिर वो अगर खुद उनको बीमारी जोर से नहीं लगी, उनको महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है वो किसी और को आगे दे नहीं सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं चलता कि ये किसको बीमारी है किसको नहीं है, लेकिन अगर हमें लगी है तो हम दूसरे इंसान को इजीली या आगे बीमारी स्मीटा कर सकते हैं, और इसी चीज का हमें ख्याल करना है कि हम किसी और को स्मीटा ना करें।
कासिम,
दुआ मेरी यही है कि जल्दी से फर्क
हो। जो है वो स्ट्रेस हो जाते हैं लोग, जो है खुदकशियों की तरफ रुझान बढ़ जाता है, तो इन हालात में लोग ज़हनी मरीज तो नहीं बन जाएंगे?
ये एक जो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये एक चीज़ है जो हमने रीजन में भी उठाई है, और जिस चीज़ का हमें डर लग रहा है वो यही है कि जो मेंटल केसेस जो होंगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होंगे कोरोना वायरस के, वो अब बढ़ जाएंगे। जाहिर है क्योंकि लोग घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, और कहते हैं ना कि अगर कुछ ज्यादा ही हम एक माँ बाप अगर ज्यादा ही क्या कहते हैं एक जगह खड़े रहे बैठे रहे तो उनके बीच भी तू तू मैं शुरू हो जाती है, तो जाहिर है कि इसमें होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस कोरोना वायरस में हम डिप्रेशन में ना आ जाएं, कि हम बाहर भी जाएं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी फोन करें, उनसे बातचीत करें। मेरी मेरी खुद आदत है कि मैं कोशिश करता हूं कि हर दूसरे दिन शाम के वक्त स्पेशली मैं इधर जंगल जो है उधर मैं जंगल में भागता हूं, ताकि थोड़ा सा मुझे फ्री टाइम मिल सके, थोड़ी सी हवा मिल सके। मैं अपने बच्चों को भी जंगल में जो लाइफ लाइस है उधर लेके जाता हूँ, ताकि उनको भी थोड़ा फ्री टाइम मिले। सुबह सवेरे हम आप, ये हर बंदे की रूटीन है कि सुबह सवेरे जब हम उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपना भी काम कर रहे होते हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे होते हैं, फिर बच्चों का फिर हम जब उनका फोकस का टाइम होता है उनको फोकस भी मिलता है, लेकिन उनको फैक्चुअलिया भी देते हैं कि बाहर जाके वो हवा ले सकें। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि ये जो टाइम अब हमें जो मिला है कि इसे हम किस तरह वैल्यू बनाएं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हमारा जो दिन होता है बहुत छाउल होता है, बहुत बिजी दिन हमारा होता है, हम काम काज में बिजी होते हैं, घर आओ, खाना बनाओ, बच्चों के साथ स्कूल का काम करो, सब कुछ करो। लेकिन ये हमें एक छोटा सा गिफ्ट भी इस तरह मिल गया है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, उनके एक चैनल से बना सकते हैं और उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं जो हम दूसरे तरीके से नहीं गुजार सकते थे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को उल्टा करें। तो मेरी भी आदत है कि मैं बच्चों को ले जाता हूँ आसपास उनके जो स्कूल के
वो भी रहते हैं, क्योंकि आपकी स्कूलिंग जाओ या आप पढ़े हैं, आप सारी चीजों को समझते हैं कि जो वालदैन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे, उनका काम जो होता है, जो खुद अपना इंटरनेट नहीं दे सकते, उनकी डाक नहीं देख सकते थे, उनका ज्यादा वक्त जो होता था वो स्कूल में बच्चे आना जाना ले आना जो है, वो स्कूल से जो सबक आता था टीचरों से पूछ लिया, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा?
बहुत मुश्किल है। आपने कहा कि आप पढ़े लिखे, बात सिर्फ पढ़े लिखों की नहीं है, यह हर बंदे के लिए मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि हमें जो घर भेजा गया है कंपनियों के जरिए वो भी यही डिपेंड कर रही है हम पे कि हम अपना काम डिलीवर करेंगे टाइम से। हमारे पास डेडलाइन दी गई है कि आपने ये काम हमें करके देना है, साथ में हमने बच्चों को भी काम करके देना है, उनकी भी मदद करनी है, और ये हर इंसान के लिए आसान नहीं। मुझे याद है पहले दिन जब मैं अपने बेटे के साथ बैठा हुआ, कहता पापा ये कंप्यूटर का ये प्रोग्राम इधर अंदर जाना है, ये कोड लिखना है, ये कोड लिखना है, ये कोड लिखना है। मैं कहा यार मैं तो अपना भी काम कर रहा हूँ, मैं आईटी टेक्नीशियन भी बन गया हूँ, साथ में इनको पढ़ाना भी है। तो जाहिर है ये हर किसी का केस है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि टीचर्स जो हैं वो तैयार बैठे हुए हैं मेल में, वो तैयार बैठे हुए हैं टेलीफोन में, अगर आप उनको कुछ लिखते हैं आपको फौरन जवाब आ जाता है। और ये टीचर को कहा गया है कि आपने अवेलेबल होना है उतने ही घंटे जितने घंटे आप स्कूल में बच्चों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है उन माँ बाप के लिए भी कि जो कहते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, हमारे लिए ये काम मुश्किल है, कि वो टीचरों का सहारा लें, टीचरों से फोन करें, उनसे बातचीत करें कि कैसे करना है। दूसरा एक तरीका जो होता है वो ये है कि बच्चों को कहें कि वो अपने जो क्लास फेलो हैं उनको भी फोन कर सकते हैं पूछने के लिए कि ये हमने काम करना है, ये हमने कैसे करना है, ताकि उधर भी उनको थोड़ी सी हेल्प और सपोर्ट मिल सके। क्योंकि जो सबसे मुश्किल ये जो कोरोना वायरस जो है ये उन फैमिलीज के लिए है जिनके जो इतने खसूस है जिनको कहते हैं जो इतने स्ट्रांग नहीं होते, ये उनके लिए है, लेकिन साथ में ये उन लोगों के लिए भी है जिनके सर पे छत नहीं है। जैसे बाहर आप देखते हैं यमलो से है, उसे है, नाखुमैना है, जिनको भी कोरोना वायरस हो रहा है, उनके लिए भी हमने एक सिस्टम बनाया है, उनके लिए भी हमने एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया है, खोला है, ताकि ये भी इधर आके टेस्ट करा सके, इनका भी ख्याल किया जाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप जो हैं वो ये ना समझे कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, हम अपने बच्चों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वरना बच्चों ने बहुत पीछे हो जाना है। तो ये जरूरी है कि वो टीचर से बात करें कि हम किस तरीके से बेस्ट तरीके से अपने बच्चों की मदद कर सकें।
ये बात बिल्कुल सही कही है कि टीचर से रابطہ करना चाहिए, टीचर हर वक्त अवेलेबल है। कासिम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामान के साथ शेयर किया और कीमती इंफॉर्मेशन दी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा सामान। और
आप पाकिस्तान जिंदाबाद। सामान ये थे अल्टरनेटिव पार्टी के कासिम नजीर, जिनकी आप बात सुन रहे थे। सामान